ओम शांति। इस सेशन के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर रामजीवम भाई। स्पार्कलर्स तो मुझे लगता है काफी उनको जानते होंगे, फिर भी मैं उनका परिचय आप सबसे करवाती हूँ। भाई साहब पिछले 18 वर्ष से ज्ञान में हैं और एक गीता पाठशाला भी चलाते हैं, समर्पित रूप से वहाँ सेवाएं देते हैं, उसका दिशा निर्देश देते हैं। उसके साथ साथ आप स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर भी हैं और स्पार्क में जो अलग अलग तरह की रिसर्च होती है उसमें भी उनका विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहता है। करंटली डॉक्टर रामजीवम भाई निमहांस के सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज में एज अ साइंटिस्ट कार्यरत हैं और आज भाई साहब हमारे बीच में साइंस फॉर सिटिंग योगा पर जो उन्होंने स्टडी किया है वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। हम सब भी उसको ध्यान से सुनेंगे। सिटिंग योगा के लिए बाबा भी हमें लगातार हर मुरली में कहते हैं कि हमें उसको बढ़ाना है, उसका अभ्यास बढ़ाना है। तो अभी हम सब सुनते हैं डॉक्टर रामजी भाई से।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सो आज का विषय यही है, साइंस ऑफ सिटिंग योग। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो राजयोग है ये बहुत सहज मार्ग का है, तो इसलिए सहज योग भी कहा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इतना सहज बना देते हैं तो योग करते टाइम पर भी हमारे शरीर कैसे भी हो, श्वास कैसे भी हो, मन कैसे भी हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं चलता है। बाबा एक्सप्लिसिटली ये बातें मुरली में कहते नहीं हैं, लेकिन आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे ब्रह्मा बाबा का लाइफ स्टाइल को, उसमें बाबा करके ऑलरेडी सिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है। वो भी बोला इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बोलेंगे एक्सप्लिसिटली कुछ शारीरिक चीज़ें, बच्चे उसको पकड़ के फिर बाकी जो मेन चीज़ें उसको छोड़ देते हैं, फिर राजयोग को हठयोग बना देते हैं। तो इसलिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बाबा ने करके दिखाया लेकिन कुछ बोला नहीं है, जहाँ पर कुछ ग्रे एरियाज होता है ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हमें अभी देखेंगे। तो ये जो आज हम देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें मेनली आजकल देखने को बहुत यही मिलता है, कहते हैं कि हम 15 साल 20 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट भी स्थिर होके बैठना नहीं होता है, कई सारे हैं। दिस इज अ बिटर फैक्ट, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसा है जैसे कोई बोलते हैं कि मैं 100 किलोग्राम का कुछ वजन उठा सकता हूँ लेकिन 1 किलो का मैं उठा नहीं सकता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हमारे बीच में ऐसा ही होता है। हम बोलते हैं कि हम राजयोगी हैं लेकिन 5-10 मिनट भी बैठने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर पूछते हैं तो कहते हैं कि ये तो मन की बात है। तो अगर मन की बात है तो मन तो इट ओवर पावर्स और बॉडी ऑल्सो, फिजिकल सिस्टम ऑल्सो, राइट? तो फिर अपने मन से तो एटलीस्ट अपना शरीर को तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? सो कुछ तो गड़बड़ चलता है ना। तो इसलिए सारी चीज़ें जो भी अभी मैं शेयर करने वाला हूँ ये सब चीज़ें आपको पता है, सिर्फ मैं आपको फिर से अटेंशन देता हूँ और कुछ नहीं है, ध्यान देता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का पोज अगर आप देखेंगे, कैन शो द स्लाइड्स, सो ब्रह्मा बाबा का पोज आप कहीं भी चित्र कहीं भी आप देखिए, उनका चित्र सदा ऐसा ही दिखता है। वो कैसे बैठे हैं उसको देखते ही हमें योग लगता है। लेकिन बाबा ये सारी चीजें एक्सप्लिसिटली बोलते नहीं बच्चों के लिए क्योंकि बहुत कुछ कारण होता है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी ये सारी चीज़ें जो कुछ छोटे छोटे डिसिप्लिन होते हैं उसको कभी बाबा ने छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे भी बहुत कुछ रहस्य है। हठ योग में बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तो जिसको हम यहाँ पर अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, अपने आंखें बंद करके जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपने आप को देखिए आप कैसे बैठे हैं। अभी कुछ मैनिपुलेट मत कीजिए, सिर्फ देखिए आप कैसे बैठे हैं। या जेंटली ओपन योर आईज, आंखें खोलिए। सभी बैठे तो है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे हर एक का जो बैठक है बिल्कुल अलग अलग है। सभी बैठे ही हैं लेकिन सभी का अपना अपना जो सिटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन ये है, ये अलग अलग स्टाइल, सभी का इंडिविजुअल स्टाइल बैठने का कहाँ से आया? कोई ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसे बैठे हैं, कहाँ से आया ये स्टाइल्स? बात कर सकते हैं सिर्फ आवाज आ रहा है लेकिन क्या है समझ में नहीं आता है। कहाँ से आता है ये स्टाइल सारे? मन से। तो आपका मन की जो स्थिति है वो कहाँ से दिखता है? आपके शरीर में दिखता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड कहते हैं ना, वो सिर्फ फेस नहीं है, पूरा आपका शरीर का जो एटीट्यूड है दैट इज ऑल्सो एन इंडेक्स बेसिकली। तो इनफैक्ट आप ये जो हठ योग करते हैं, हठ योग भी मैं नहीं कहूंगा, पतंजलि योग जो पतंजलि फादर ऑफ योगा कहते हैं, उसमें आसन एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, वन ऑफ द 8 लिम्स। पतंजलि ने तो कुछ कहा ही नहीं है कि आसन का नाम वगैरह कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं है। सो दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इन द एंटायर योग सूत्रस ऑफ पतंजलि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल नेम्ड आसना। लेकिन पूरी दुनिया एक्चुअली आसना के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जिसको हम फादर ऑफ योगा मानते हैं उन्होंने अपने योग सूत्र में एक भी आसना का नाम हो या प्राणायाम का नाम हो उन्होंने कुछ मेंशन किया ही नहीं है। लेकिन योगासना को एक इम्पॉर्टेंट अंग उन्होंने बनाया। उसका सिंपल लॉजिक ये है, अगर आपका मन का जो एटीट्यूड है वो आपका शरीर का स्थिरता कहो या आपके शरीर के जो कुछ दिखता है बाहर से एटीट्यूड, इफ दैट डिसाइड्स योर फिजिकल एटीट्यूड, योर मेंटल पॉस्चर, रिवर्स क्या वो भी हो सकता है? आपके शरीर का जो एटीट्यूड है उसको मैनिपुलेट करने से आपका मन का जो स्थिति है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। तो यही सिंपल लॉजिक है जिसको पतंजलि ने एक कोर लॉजिक बना के आसना को एक अंग बनाया, बाकी कोई कुछ आसना का नाम वगैरह उन्होंने उठाया ही नहीं है। क्योंकि उनको इतना तो पता था मन में जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना तो नहीं हो रहा है, तो उनको ही हम फिर से कहेंगे थोड़ा आराम से बैठो 5 मिनट मन को कंट्रोल करके, तो क्या होता है और अंदर गड़बड़ी चलता है। तो उसके बजाय शरीर के हिसाब से कुछ करने के लिए बोलेंगे तो बहुत आराम से करते हैं, लेकिन उसके पीछे रहस्य ये है आप शरीर को स्थिर होके कुछ मिनटों के लिए भी आप बैठेंगे तभी उसका असर मन के ऊपर पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसको आसन कहा जाता है। आसन माना एक्चुअली स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इसका इंग्लिश शब्द जो है वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली इंग्लिश में आसना को क्या कहते हैं? पोस्चर। और ये जो पोस्चर शब्द है जब हम फोटो खींचते हैं तभी उसको यूज करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? डोंट मूव, जस्ट रिमेन स्टिल, उसका मतलब वही है। तो लॉजिक क्या है? शरीर को हिलते रहेंगे तो उसका असर मन के ऊपर नहीं पड़ता है, पड़ता है लेकिन वो जो हमें चाहिए उसके रीति से नहीं पड़ता है। जब आप थोड़ा टाइम के लिए स्थिर होके बैठेंगे शारीरिक रीति से तभी क्या होता है, यहाँ शरीर से सिग्नल्स वहां पर ऊपर ब्रेन के ऊपर पड़ता है, फिर माइंड के ऊपर भी पड़ता है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप बेंड करके अपना जो हाथ है उसको नीचे पांव तक लेके जाना है, अपने जो थाई मसल्स है, नीज है, उसको बेंड नहीं करना है, ये भी एक आसना करते हैं ना, तो वैसे आप करेंगे, हम बोलेंगे तो क्या करते हैं, झुकते हैं, फिर जैसे झुकते हैं उतना ही इजीली फिर से वापस आ जाते हैं। क्यों, क्या होता है, शरीर के रीति से तो कुछ करते हैं, क्या होता है जिसके कारण आप तुरंत वापस आ जाते हैं। तो जब मसल्स स्ट्रेच होता है तुरंत सिग्नल सारे नर्व से ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन में जो पहुंचता है सिग्नल्स उसको मन अनुभव करता है, ये तो दर्द है, गो बैक, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो ये जो लॉजिक और मन का कंट्रोल, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है, जब आपके मसल से सिग्नल यहां पर जाता है फिर तुरंत मन बोलता है कि बस खत्म करो, वापस आ जाओ, लेकिन उस टाइम पर अगर आप अपने मन से फिर से बातें करेंगे, नहीं नहीं थोड़ा टाइम के लिए रुको, मैं वापस तो आ जाऊंगा बट और कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए तो रुको, ये जो अंदर की कॉन्वर्सेशन है कुछ सेकंड्स के लिए, वहां पर आपका विल पावर है। तो दिस इज द वन दैट ट्रांसलेट्स इन ह्यूमन रिलेशंस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके सामने आके गुस्सा करता है तो तुरंत हम रिएक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम स्वयं को बोल भी सकते हैं थोड़ा तो रुको, कुछ तो कारण होगा। वो जो थोड़ा सेकंड्स आप रुकते हो उसी को विल पावर कहा जाता है। आप मानसिक रीति से भी ऐसे कर सकते हैं सोशल रिलेशंस में, वही सेम चीज शारीरिक रीति से आसना के नाम पर करते हैं। हम तो कई सारे आसना करना है ऐसा नहीं कह रहे, उसका मतलब यह है अब जो भी पोस्चर आपको कंफर्टेबल है वही पोस्चर आप चूज कीजिए, लेकिन उसी में, उसी पोस्चर में स्थिर होके बैठिए। तो दो मिनट बैठते हैं फिर उसके बाद फोन को देखते हैं, नहीं तो वो क्या कर रहे हैं उनको देखते हैं, या कुछ शब्द आता है तो वहां पर देखते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मन में जो अंदर चल रहा है ड्रामा उसका एक्सप्रेशंस है, और दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ मच कंट्रोल वी हैव इनसाइड। तो इसलिए आप ब्रह्मा बाबा को कहीं भी जो भी चित्र उनका होता है मैक्सिमम अगर देखें तो ऐसा ही बैठक उनका होता है। तो इसमें आसन वगैरह कुछ नहीं है, इसमें लॉजिक ये है, अपने मन का जो कंट्रोल है वही सेम एक्सरसाइज आप कर रहे हैं लेकिन बहुत इसी रीति से शारीरिक रूप से कर रहे हैं। तो ऐसा समझ के आप बैठेंगे तो आप आराम से बैठ सकते हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कुछ घुटनों का प्रॉब्लम है फिर भी फोर्सिबली बैठो, उसका मतलब ये नहीं है। आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन है उस पोजीशन में बैठिए, लेकिन हिलना मत मैक्सिमम। अगर आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट होता है वो अलग बात है, कुछ शारीरिक बीमारी है वो अलग बात है, लेकिन आजकल बच्चों को नीचे बैठना मना क्या वो पता ही नहीं है, लेकिन उसके फायदे बहुत कुछ है, तो वही चीज अभी हम देखेंगे। तो उसका मेन एक फायदा ये है, स्पेशली जब हम नीचे लेग्स को क्रॉस करके बैठते हैं, दिस डजंट अप्लाई फॉर एवरीवन, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको होता है, तो इसका फायदा मेन ये है, हार्ट से ब्लड पंप होता है और जो भी ब्लड पंप होता है वो ऊपर भी जाना चाहिए नीचे भी जाना चाहिए, और जो भी ब्लड पंप ऑलरेडी हुआ है वो सारी चीजें सेल में ऑलरेडी यूज होता है, यूज होने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। जैसे जैसे इम्प्योर ब्लड ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से हमें दर्द ये सब चीजें होता है, डिस्कम्फर्ट ये सारी चीजें होता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, उसको कैरी करने के लिए एक सेट ऑफ ट्यूब्स है जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, यहां पर राइट साइड में रेड कलर में दिखाया है। और जो इम्प्योर ब्लड है सेल्स में ऑलरेडी पूल्ड है उसको वापस हार्ट तक लेके आना पड़ता है, तो वो काम जो करता है उसको हम वीन्स कहते हैं, वीनस ब्लड कहते हैं, इम्प्योर ब्लड जो ब्लू कलर में दिखाया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हार्ट से जब पंप करते हैं इट वर्क्स लाइक ए पंप, सो प्रेशर इज देयर, यहां तक इजीली आ जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी भी, और नीचे पैर तक जाना तो इजी है, हार्ट से जाना इजी है, लेकिन नीचे से हार्ट तक वापस आना ये बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये जो वीनस सिस्टम है उसमें कुछ पंपिंग मैकेनिज्म्स है, वाल्व्स है, जैसे एक बार प्रेस करते हैं वो वीन्स तो ऊपर आ जाता है, फिर वापस नहीं जा सकता है। वो पंपिंग मैकेनिज्म कहां से काम करता है, मसल से होता है। अगर आपका मसल्स काम नहीं करता है वो पंपिंग मैकेनिज्म वाल्व्स वो सब लूज हो जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी इम्प्योर ब्लड है इट गेट्स पूल्ड इन द पेरिफेरी इटसेल्फ, वापस यहां तक नहीं आता है। जब हम लेग्स को क्रॉस करके बैठते हैं ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, हमारे जो कफ मसल्स है, थाई मसल्स है, वी आर पुटिंग देम इनटू एक्शन, सो इट वर्क्स एज ए पंप। तो जो इम्प्योर ब्लड है जिससे हमें दर्द आता है वो सारी चीजें आसानी से यहां तक हार्ट तक पहुंचता है। तो इसलिए अगर आपको हो सकता है, बहुत अच्छी चीज है, कुछ लोग अभी फॉलो करना शुरू कर दिया तो अगर आपको हो सकता है लेग्स को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, तो आजकल कई सेंटर्स में सिर्फ चेयर्स ही होता है, वो अलग बात है, तो अदरवाइज जब भी आपको होता है नीचे एक्चुअली लेग्स को क्रॉस करके बैठने से आपको बहुत कुछ फायदे हैं। और दूसरा चीज है, जब आप बैठते हैं हमारे जो बैक मसल्स है जिसके सपोर्ट से हम बैठते हैं, वो बैक मसल्स के लिए हमारे ब्रेन से रेगुलरली सिग्नल्स आता ही रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। से फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो बैनर लगा हुआ है वो बैनर में एक स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस ही कुछ नहीं है तो क्या होता है, इट जस्ट बिकम्स ए लंप, वो स्टिफ होके वहां पर खड़ा नहीं कर सकते हम, उसके कारण ही पीछे कुछ सपोर्ट भी रखा है। तो सपोर्ट होने के बाद भी वो जो बैनर का मेटीरियल है उसमें भी कुछ स्टिफनेस चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस, जिसको हम मसल का टोन कहते हैं। ये टोन कहां से आता है, ब्रेन से रेगुलरली सिग्नल्स आता ही रहता है, क्योंकि वो टोन को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, गिर जाएंगे। वो मसल टोन जो है वही हमें मदद करता है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं हमारा ओरिजिनल पोजिशन ही यही है, ऐसे सीधा बैठना ही ओरिजिनल नेचर है हमारा मसल का। जैसे हम आत्मा के लिए कहते हैं ये ओरिजिनल वर्च्यूज है, वैसे हमारे जो मसल्स है उसका ओरिजिनल नेचर है सीधा होके बैठना। सीधा होके बैठना माना क्या है, ब्रेन से सिग्नल आता है, उसका मतलब क्या है, आई एम कीपिंग माई ब्रेन अलर्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेन तो कहता है कि मैं सिग्नल देता हूं मैं अलर्ट रहना चाहता हूं, हम क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए मैं ऐसे ही बैठना चाहता हूं। तो जो सिग्नल आता है ब्रेन जो कहता है कि मैं अटेंटिव होके बैठता हूं, लेकिन हम उसका अपोजिट करके मुझे वो नहीं चाहिए कहते हैं। हम चाहते हैं अलर्ट होके योग करना, लेकिन विदाउट अवर नॉलेज ये सारी चीजें भी साथ साथ हम करते हैं। तो दूसरा ये फायदा है, जब आप सीधा होके बैठते हैं आपका ब्रेन भी आपका मन भी अलर्ट होता है। ये बचपन में भी सिखाया जाता है, लेकिन उसका पीछे क्या रीजन है सिर्फ वो मैं वही बता रहा हूं और कुछ नहीं है। तो ये हुआ शारीरिक स्थिरता, क्यों हमें शरीर को स्टेबल होके, शरीर की रीति से स्टेबल होके क्यों हमें बैठना है, वही इसका रीजन है। वैसे ही अगर देखें आंख के बारे में भी बाबा बहुत कुछ कहते हैं मुरली में ही, तो ये जो आंख है और मन जो है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में भी बहुत कुछ है, बहुत स्ट्रांग गहराई कनेक्शन है। तो कनेक्शन ये है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में एक्चुअली सिर्फ आंखों को लेके थेरेपी देते हैं। तो वन ऑफ द थेरेपीज आई मेंशन हियर EMDR कहते हैं, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग। कुछ लोग सुने होंगे PTSD ऐसा एक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। से फॉर एग्जाम्पल अचानक किसी ने कुछ बहुत कुछ नेगेटिव इंस्टेंस उन्होंने अनुभव किया, कुछ एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो ऐसा। वो क्या होता है, इतना स्ट्रांगली इम्प्रेस हो जाता है अंदर, वो इंस्टेंस तो हो गया लेकिन होने के बाद भी बार बार वही चीजें फ्लैशबैक आता ही रहता है। और जो एक्चुअली हुआ उस टाइम पर जो एंग्जाइटी हुआ, फियर हुआ, वो सारी चीजें अपने आप रिक्रिएट होता है, जिसको हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये थेरेपी भी यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों कहता हूं, इसका मतलब ये है हमारे जो आंखें हैं, आंखों की सराउंडिंग्स में बहुत मसल्स है, और हम जो सोचते हैं, हर एक सोच का, हर एक थॉट का अपना वाइब्रेशन है, ये तो हम सभी को पता है। उसके हिसाब से हमारे ब्रेन का भी सिग्नल्स निकलता ही रहता है, और इन द इमीडिएट विसिनिटी हमारे आंख है, और आंखों की सराउंडिंग्स में जो मसल्स है वो है। सो अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन, द फर्स्ट मसल्स विच गेट्स अफेक्टेड एक्चुअली हमारे आई मसल्स है। तो इसलिए कई लोगों को अनुभव भी होगा, जब हमें कुछ टेंशन होता है कई बार आंखों के पीछे में भी दर्द होता है। उसका कारण ये है, आई मसल्स में टेंशन बढ़ता है। तो हम जो नए लोग आते हैं कोर्स लेने के लिए, उनको हम शुरू में कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं आता है तो भी ठीक है, बाबा का वो लाइट, प्लग वाला लाइट दे देते हैं, उसको लगा के उसको देखते रहो। वो एक्चुअली बहुत सिंपल लगता है लेकिन वो भी बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, हमारे मन के सोच के हिसाब से, ब्रेन का जो भी सिग्नल्स है उसके हिसाब से, whether you know it or not, whether you want it or not, there is always a constant movement of the eyes. वो दिखता नहीं है, जिसको हम माइक्रो saccades कहते हैं, saccadic movements कहते हैं। It keeps on always moving this way, like this. So अगर आप कुछ काम करते हो या नहीं हो आंखों के द्वारा, फिर भी it is already working. और उसका भी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारी चीजें अक्यूमुलेट होता है, वहां से उसका भी टेंशन भी बढ़ता है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब उसको एक पॉइंट देख के, सिर्फ उसी को आप देखते रहो, कहते हैं ये जो अंदर की कुछ मूवमेंट्स विच कीप्स ऑन हैपनिंग कंटिन्यूअसली, उसको थोड़ा टाइम के लिए एटलीस्ट रेस्ट मिलता है। इट कैन बी जस्ट एन एक्सटर्नल थिंग फिजिकली, आर अंदर ही अंदर आप एक इमेज, वही सेम चीज जो बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट है, अपने मन में ही आप कितना आप स्टेबल होके अंदर से, मन की आंख से आप देख सकते हैं, उसी में भी आपका आंखों का जो मसल्स है उसके लिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए ये जो आंखों का एक्सरसाइज है, स्पेशली कुछ पॉइंट ऑफ लाइट को सामने रख के उसके ऊपर फोकस करना, वो भी एक सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे मन के साथ भी उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। सिर्फ ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर आपको ऑलरेडी बहुत कुछ टेंशन है, बहुत फोर्सिवली कोई स्पेशली फ्लिकरिंग लाइट जो है उसको फोकस मत कीजिए, कभी कभी आपका हेडेक भी ज्यादा हो सकता है। अगर कुछ लोगों को कुछ फिट्स की प्रॉब्लम है, फिट्स भी इंड्यूस हो सकता है, स्पेशली जब फ्लिकरिंग लाइट्स है उसको अगर आप बहुत फोकस करके देखेंगे तो। तो इसलिए इसको और कुछ सिंप्लीफाई करके विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स हमें यूज करना है, उसके लिए एक तरीका है जिसको हम फोकस और डीफोकस एक्सरसाइज कहते हैं। एक्चुअली जो नए लोग आते हैं उनको भी हम सिखा सकते हैं, हम भी एक्चुअली खुद करके उसका अनुभव क्या है देख सकते हैं। एक्सरसाइज इतना सिंपल है, एक जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट या कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने जो भी है उसको चूज करना, सिर्फ उसको देखते रहना। ऐसे देखना जैसे आप अपने आंख से यहां पर, मस्तक से लाइट रेज वहां तक पहुंचता है, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, इसको फोकसिंग कहते हैं। इसके साथ साथ से फॉर एग्जांपल, अगर अभी मेरा फिंगर यहां है, मैं इसको, ये जो टिप है उसको देख रहा हूं, दिस इज एक्चुअली फोकसिंग। डीफोकसिंग क्या है, आई एम स्टिल लुकिंग एट द फिंगर टिप बट माई अवेयरनेस इज नॉट हियर, माई अवेयरनेस इज एवरीवेयर। आप सभी यहां पर बैठे हैं वो भी मुझे दिख रहा है एक्चुअली, मेरा अवेयरनेस मैं वहां पर भी रख सकता हूं लेकिन मेरा आंख यहां पर फिक्स्ड है, इसको हम डीफोकस कहते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज ऑल्सो। जब आपको बहुत टेंशन होता है उस टाइम पर आप इसको करके देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो आई मसल्स है ना उसका एक बहुत जेंटल मसाज मिलता है। जब आप फोकस करते हैं तो उस टाइम पर मसल्स टाइट होता है, जब आप डिफोकस करते हैं मसल्स रिलैक्स होता है। तो इसका असर आप करके देख सकते हैं। तो ये है हमारे आंख और मन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन। क्योंकि मन जितना भटकता है वो सिर्फ शरीर में नहीं दिखता है, आपके आंख में भी दिखता है और उसके साथ साथ हमारे श्वास जो है उसमें भी दिखता है। अगर आप ऑब्जर्व किया है तो आपको ये पता होता है, जब बहुत किसी को गुस्सा होता है तो उनके श्वास को अगर देखें तो ऊपर नीचे होता है, इट विल नॉट बी लाइक स्लो स्टेडी एंड देन स्मूथ। इट्स नॉट ओनली फॉर रियल लाइफ सिनेरियोस, जो एक्टर लोग होते हैं उनके अलग अलग सीन्स होते हैं, कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, कभी कभी हंसना पड़ता है, जब वो एक्ट करते हैं वहां पर भी उनका ब्रेथ एक्चुअली मॉड्यूलेट होता है, उतना इसका गहरा कनेक्शन है। वो करते तो एक्टिंग है, मन के हिसाब से एक्टिंग चलता है, लेकिन वो भी एक्चुअली उनका जो श्वास है उसका रेट और डेप्थ जो है उसको इम्पैक्ट करता है, उतना स्ट्रांग कनेक्शन है। और द कनेक्शन बिटवीन ब्रेथ एंड माइंड इज समथिंग एज काइंड ऑफ सॉलिड एविडेंस इन साइंस। वो एविडेंस ये है, अगर आपका ब्रीदिंग रेट इफ इट कम्स अराउंड 6 ब्रेथ पर मिनट, यू कैन नॉट एक्चुअली गो विदाउट एक्सपीरियंसिंग ए साइलेंस इन माइंड। लेकिन ये जो 6 ब्रेथ पर मिनट आप अभ्यास कर रहे हो, इट इज नॉट बाय फोर्स, बाय ग्रेजुअल प्रैक्टिस। सो हमारे ब्रीदिंग रेट और हमारे जो हार्ट का वर्किंग मैकेनिज्म है उसके साथ कुछ कनेक्टेड चीजें हैं जिसको हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कितना स्ट्रेस है अंदर। तो जैसे जैसे हमारे ब्रीदिंग रेट और डेप्थ मॉड्यूलेट होता है उसके हिसाब से हमारे जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है जिसको हम एक स्ट्रेस का इंडेक्स कहते हैं, दैट ऑल्सो गेट्स मॉड्यूलेटेड। दैट इज हाउ we feel, we experience that silence inside the mind. So वही मैं यहां पर दिखाया हूं, ये जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, जितना एंग्जाइटी बढ़ता है उसके हिसाब से ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है। ये जो वाई एक्सिस है, कितने बार आप श्वास लेते हो छोड़ते हो एक मिनट पर, तो वही वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस आपका एंग्जाइटी लेवल कितना है। For example, from 0 to 100, if I ask you to score, कुछ नंबर देंगे तो ऐसा नंबर है ये x-axis। तो आप देख सकते हैं जैसे एंग्जाइटी बढ़ता है वैसे ये y-axis का भी बढ़ता है, आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है। तो ये है सिंपल लॉजिक जिसको योग शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, ये तो यहां पर नीचे लिखा है, बट द मीनिंग ऑफ दैट इज when there is a movement of breath, there is movement of mind, and the reverse is also true. When there is no movement of breath, there is no movement of mind also. The vice versa also true. When there is movement of mind, there is movement of breath. When there is no movement of mind, there is no movement of breath. So this is the simple but very powerful logic, and it deeply impacts the mind as well. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? Especially जब हमें इतना अंदर कुछ restlessness है, कई कारण होता है। कितने साल हम ज्ञान में होते हैं वो सारी चीजें अलग बात है, लेकिन सभी को कभी कभी होता ही है, बैठते हैं योग करने के लिए लेकिन मन टिकता नहीं है। एस्पेशली जब ऐसे समय होता है तो उस टाइम पर हम ये सारी चीजें एक्चुअली यूज कर सकते हैं। तो करना तो इतना ही है, सिर्फ आप सिर्फ अपना जो ब्रीदिंग रेट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका ध्यान उसके ऊपर जाएगा अपने आप आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कम होता है। यू डिड नॉट एक्चुअली फोर्स टू ब्रिंग इट टू 6 ऑल दोज थिंग्स, दैट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली इट कम्स डाउन, उतना ही काफी है, आपके मन के ऊपर उसका असर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो जरूर कर सकते हैं सभी, ये बहुत ईजी है, सिंपल है। बाकी अगर आप कुछ प्राणायाम ये वो सब चीजें करते हैं वो अलग बात है, मेडिटेशन के लिए इतना भी काफी है। तो वैसे ही शरीर के लिए भी जो है, जो आंखों के लिए कहा वो भी कर सकते हैं। अदर देन दैट, जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर आपका ब्रीदिंग रेट इफ इट कम्स अराउंड 6, उसका असर मन के ऊपर पड़ता है, वैसे ही अगर आपके जो शरीर के कुछ मसल्स है उसका भी आप रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे अगर आप रिदमिकली करेंगे उसका भी असर मन के ऊपर पड़ता है। जैसे आप ब्रीदिंग रेट 6 पर लेके आते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन इवन डू सिंपल एक्सरसाइज, जस्ट होल्ड लाइक दिस काउंट, से फॉर एग्जाम्पल मे बी 10 काउंट्स एंड देन रिलीज, अगेन होल्ड, काउंट फॉर 10, रिलीज, होल्ड, काउंट फॉर 10, रिलीज। साइमल्टेनियसली आप अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है। सो व्हेन यू ब्रिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द रिदमिसिटी टू दैट लेवल ऑफ 6 पर मिनट लाइक दैट, उसका भी असर होता है। सो आर 3 डिफरेंट लेवल, शरीर के हिसाब से, आंख के हिसाब से, ब्रीदिंग के हिसाब से, ये सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका मन बिल्कुल रेस्टलेस है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो उस टाइम पर ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जो नए लोग आते हैं उनके लिए भी ये यूज होता है। तो नेक्स्ट चीज है हमारे मन के ऊपर, मन की भी जो स्थिरता है, बाबा कहते हैं स्पेशली बैलेंस के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं घंटों घंटों तक बैठ सकते हैं लेकिन किसी से भी वो बात नहीं करना चाहेंगे, ऐसे भी होते हैं। इन ए वे सुपरफिशियली इट लुक्स लाइक ए काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, बट इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ डीप अनरेस्ट बेसिकली। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी होके योग करते हैं उतना एक्चुअली एनर्जी भी अंदर इकट्ठा होता जाता है। उसको आप कैसे यूज करते हैं फिर से, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज जो है ये भी ब्रह्मा बाबा ने एक्चुअली बहुत सिस्टमैटिकली करवाया दादियों से, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पर ऐसा नहीं। बाबा ने एक्चुअली सारी चीजों को बहुत इंटेलेक्चुअली उन्होंने इंटेग्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल हर दिन कुछ खेल होता था, वॉकिंग के लिए बाबा लेके जाते थे, और अगर कुछ जाके किसी को फिजिकली सेवा नहीं किया, किसी को कुछ परिचय नहीं दिया, तो नाश्ता नहीं है, करने के बाद ही नाश्ता है। ये सारी चीजें बाबा ने बहुत नेचुरली इंटेग्रेट करके रखा था। तो इसलिए गोइंग इंटरनली एंड देन डूइंग मेडिटेशन तपस, उसके साथ साथ बाहर आना और कुछ करना है, लोगों से मिलना जुलना, इट वॉज वेरी नेचुरली इंटेग्रेटेड। लेकिन अभी हमें ये सारी चीजें कॉन्शियसली करना पड़ता है, नहीं है तो क्या होता है, आप कुछ जाके करने की आवश्यकता नहीं है कि जगह पर बैठ के कुछ बटन दबो, सब चीजें होता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, ये जो बैलेंस की बात है उसका गड़बड़ होता है। जब आप अंतर्मुखी होके याद करते हैं, याद में बैठते हैं, तो उस टाइम पर कुछ ब्रेन के नेटवर्क्स काम करते हैं जिसको हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये नाम के चक्कर में आप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू गेट इंट्रोवर्टेड एंड डू समथिंग इन द नेम ऑफ मेडिटेशन और समथिंग सिमिलर, उसके लिए एक सेट ऑफ नेटवर्क है वो काम करता है। और जब आप बाहर मुक्ता में आके कुछ सेवा करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो वो जो एक्सटर्नलाइजेशन है उसके लिए एक नेटवर्क है जिसको हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब इन दोनों का बैलेंस है, इन दोनों में स्विच करना है, उसके लिए एक स्विचिंग नेटवर्क है जिसको हम सेलियंस नेटवर्क कहते हैं। हमें जो लगता है कि अभी अंतर्मुखी बनना है वही इंपॉर्टेंट है, वो जो हम फील करते हैं यही इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम पर एक्चुअली ये स्विचिंग होता है, उसके लिए सेलियंस नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। सो स्टेबिलिटी या स्थिरता हम जो कहते हैं, इट इज एक्चुअली आवर कैपेसिटी टू एंगेज एज वेल एज डिसएंगेज, not just either completely doing service, getting completely externalized, or not just sitting for hours together और कहना कि मैं योगी हूं, not that also. So stability, स्थिरता माना, जब चाहिए आप बाहर आके engage कर सकते हैं, जब चाहिए वहां से हटा के अंदर भी जा सकते हैं। सो वही स्थिरता है और वही चीज एक्चुअली दीज नेटवर्क्स आर डूइंग। जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क और सेलियंस नेटवर्क, ये सारी चीजें तो आप देख सकते हैं बाबा कितना बहुत अच्छी रीति से सारी चीजों को इंटेग्रेट करके रखा है। तो इसलिए बाबा बार बार यही भी कहते हैं कि बैलेंस से ही हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है, क्योंकि जब ये बैलेंस नहीं होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू इंटेग्रेट योर ओन लाइफ ओनली। तो फिर दूसरों के साथ कहां हम इंटेग्रेट कर सकते हैं, कहां दूसरों से हम आशीर्वाद ले सकते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये है मन की स्थिरता। तो वही सेम चीज एक्चुअली मैं पिक्टोरियली दूसरे रूप में यहां पर दिखाया हूं। जनरली व्हाट हैपेंस, ईदर वी आर वेरी मच इंट्रोवर्टेड, जिसको यहां पर डीएम मन नीचे दिखाया है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंप्लीटली एक्सटर्नलाइज्ड, सिर्फ सेवा 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 और कुछ नहीं है। बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठने के लिए नहीं होता है। सो वो है यहां पर दिस साइड, ये जो सीईएन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क है, दैट इज एक्चुअली टू मच। लेकिन योग क्या है, ऑन दिस साइड व्हाट यू सी, बोथ आर वर्किंग एट द सेम पेस साइमल्टेनियसली। तो उसके हिसाब से हमारे जो ब्रेन के नेटवर्क्स है, दैट ऑल्सो लुक्स लाइक वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, वेरस हियर इफ यू सी इट इज वर्किंग टू मच, बट इट इज एक्चुअली मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे। तो अगर ऐसा चलता है तो यही बिहेवियर होता है, अगर ऐसा चलता है तो यही हमारा बिहेवियर होता है। सो दिस इज अबाउट स्थिरता, शरीर के हिसाब से, श्वास के हिसाब से, कर्मेंद्रियों के हिसाब से, स्पेशली हमारे आंख और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन। तो आजकल हम जो भी देखते हैं बैठते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है बैठ के करने के लिए, लेकिन इसका बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस किया, इसका अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है, इसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। तो यही था आज का सेशन, और इसके रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमारा चलता है, तो उसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आई एम फिनिशिंग इट। तो आजकल लोग प्रूफ भी चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम राजयोगी हैं, बहुत हम पीसफुल रहते हैं, तो दिखाओ थोड़ा। तो कैसे दिखा सकते हैं, हम बोलते हैं कि हम सहज योगी हैं, हम सारी चीजें करते करते हम एक्चुअली मेडिटेशन करते हैं, लेकिन लैब में तो करना बहुत मुश्किल होता है टेस्टिंग, आपको बैठना पड़ता है, वो भी बैठना आपको एक घंटा तो बिठाना बहुत मुश्किल होता है, हमें भी मुश्किल होता है, आपको मुश्किल होता है वो अलग बात है, लेकिन हमें भी मुश्किल होता है। तो आपको हम मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट तो बिठा सकते हैं। तो अगर आपको अभ्यास ही नहीं है बैठ के करने का, 10-15 मिनट में आपके मन को स्थिर करके कुछ रिजल्ट देना वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल होता है। आपको सेटल होने में ही वो 10 मिनट पूरा हो जाता है। तो इसलिए अभी अपने आप से पूछिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप आ सकते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, आप अपने आप से पूछिए। तो हमें एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स चाहिए। तो जिसको भी हो सकता है, अगर आप बैंगलोर उस तरफ आएंगे तो जरूर हमें बताइए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, इट गोज फॉर 2 डेज। मेनली हम ये टेस्ट करते हैं इसमें, अगर कोई कुछ आसना या प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर हमें एटलीस्ट बाहर से दिखता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसको फॉलो करते हैं, तो आई अंडरस्टैंड दैट दे आर डूइंग व्हाट आई से। लेकिन मेडिटेशन में प्रॉब्लम यह होता है कि आप बोलते हैं मैं मेडिटेशन किया, लेकिन आपके अंदर क्या चला मुझे भी पता नहीं, कई बार आपको भी पता नहीं चलता है। तो मेडिटेशन होता है या नहीं है उसका क्या सिग्नेचर है अभी तक हमें पता नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति को भी 10 बार बुला के आप करेंगे, हर एक समय अलग अलग सिग्नल्स आता है। इट्स नॉट ओनली फॉर आवर मेडिटेशन, कई सारे मेडिटेशन का हालत यही है। इसका रीजन 2 हो सकता है, हमारी जो मन की स्थिति है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, ऑन टॉप ऑफ दैट स्टिल यू आर स्टेबलाइजिंग, ये भी हो सकता है। और दूसरा है, आप बोलते हैं मेडिटेशन लेकिन आप करते ही नहीं है, दिस ऑल्सो कुड बी अनदर रीजन। अभी तक एक्चुअली हमें पता नहीं है क्या चलता है। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए ही ये प्रोटोकॉल हमने बनाया है। इसमें क्या है, आप मेडिटेशन जो भी आप समझते हो आप करो, लेकिन आपको हमें ये देना है, हम आपको एटलीस्ट 4 times मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे ऑन 2 different days। एक दिन में आपको 2 बार करना पड़ेगा। और ये जो 4 मेडिटेशन सेशंस है, ये 4ों मेडिटेशन सेशंस में एटलीस्ट 3 ऑफ द मेडिटेशन सेशंस यू शो अस अ सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेन सिग्नल्स। एग्जैक्टली तो वो नहीं होता है, बट इट कैन लुक एटलीस्ट सिमिलर, बिकॉज द बॉडी वर्क्स विथ ऑलवेज वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीपी में अभी मेजर करूं, से फॉर एग्जाम्पल इट मेट शो एज 120/80, अभी 10 मिनट छोड़ के फिर से मेजर करूं, यू मे और मे नॉट गेट एग्जैक्टली अगेन 120/80, बट स्टिल यू विल बी विद इन नॉर्मल। सो दिस वेरिएबिलिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ हाउ दिस बॉडी वर्क्स। सो अकोमोडेटिंग दैट वेरिएबिलिटी, कैन यू शो सम सिमिलैरिटी फॉर ऑल द मेडिटेशन सेशंस, तो यही हम इसमें चेक करते हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ 2 टास्क है। एक है आप कुछ मत करो, सिर्फ बैठो, जिसको हम रेस्ट कहते हैं, और कुछ कॉग्निटिव टास्क भी देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल कुछ मेमोरी टास्क हो या कुछ भी। तो इससे फाइनली हमें ये चाहिए, आपका मेडिटेशन सेशन, रेस्टिंग सेशन, और ये जो कॉग्निटिव टास्क, कुछ मेमोरी या जो भी टास्क है, दीज 3 शुड लुक डिफरेंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट। सेकेंड थिंग इज, आपके जो मेडिटेशन सेशंस है वो सभी एक जैसा दिखना चाहिए। सिमिलरली आपके रेस्ट सेशंस, आपके वर्किंग मेमोरी सेशंस या कुछ कॉग्निटिव टास्क सेशंस, ये तो इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो चलता है उसका कंट्रोल तो नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन गेट इन टू दैट पर्टिकुलर मेंटल स्टेट, दैट इज एन इंडेक्स ऑफ योर प्रोफिशियंसी। तो वही हम इसमें चेक कर रहे हैं। तो इसका एक इंटरिम रिजल्ट्स भी है, रिजल्ट्स के डेप्थ में मैं तो नहीं जाता हूं, लेकिन फाइनली इसका कैसे हम यूज करना चाहते हैं फ्यूचर में, से फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे टूल्स आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं, उसको देखते हैं और मेरा बीपी कैसे है, तो ज्यादा है कम है, तो उसके लिए वो कुछ सजेशंस भी देता है, उसको देख के वो करते हैं, वॉकिंग हो या कुछ भी हो। वैसे ही सेम चीज जिसको हम न्यूरो फीडबैक कहते हैं। तो अगर हमें कुछ स्टैंडर्ड मेडिटेशन का सिग्नेचर यही है, ऐसा हमें कुछ सिग्नल सिग्नेचर अगर मिलता है, उसको हम एक रेफरेंस बना के फ्यूचर जो भी हम टूल्स बनाना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल न्यू कमर्स जो 7 days कोर्स लेने के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। आप ये ऐप जो है इसको आप देखो, अगर आपके मन में शांति अनुभव होता है, आपका ये जो कलर है ऐप में वो बढ़ेगा। अगर आपके मन में शांति नहीं अनुभव हो रहा है तो उसका कलर दूसरा होता है। आप ट्रायल एंड एरर में, हमने जो भी सीखा है ट्रायल एंड एरर में आप करते रहो, आपका टास्क इतना ही है, जो कलर चाहिए वो कलर स्क्रीन में आना है बस। सो इट बिकम्स लाइक काइंड ऑफ डेटा ड्रिवन थिंग, इट बिकम्स लाइक अ गेम, एंड इट विल बी मोर एंगेजिंग ऑल्सो, इट वॉन्ट बी बोरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो यही एक्चुअली फाइनली हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ब्रेन सिग्नल्स, स्टैंडर्ड सिग्नेचर हमें चाहिए, मेडिटेशन माना यही है, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें हमें चाहिए तो मैं अगर बैठूंगा तो मेडिटेशन ही होता है, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स चाहिए हमें। तो जो भी ऐसा कर सकते हैं, स्पार्क ऑफिस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वही प्रोजेक्ट हम यहां पर भी कुछ पोर्टेबल डिवाइसेस से मेजर करने के लिए फ्यूचर में प्लान्स है। अभी तो सिर्फ हम जहां काम कर रहे हैं बैंगलोर में वहां पर ही कर रहे हैं, और यहां पर भी फ्यूचर में करेंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखे आप अपना जो योग का अभ्यास है उसको कीजिए, तो फिर फ्यूचर में आप बीइंग ए पार्टिसिपेंट ऑल्सो यू कैन डू सेवा। बाकी सेवाएं तो सभी करते हैं, क्योंकि अभी क्या है, हम किसी को बुलाते हैं तो उनको अंदर कुछ डर होता है, आप कुछ कैप्चर तो करते हैं लेकिन उसमें कुछ गलती तो नहीं निकलेगा, उनको ये भी प्रश्न होता है। सारी चीजें समझाएंगे तो भी उनको कभी कभी वो अंदर जाता ही नहीं है, नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ बोल के चले जाते हैं। तो कई सारे लोगों को ये भी डर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू फॉलो सर्टेन थिंग्स इन ए सिस्टमैटिक वे, आपका ब्रेन उसको एक्चुअली फॉलो करता है, सो देन यू ऑल्सो कैन क्रिएट वॉट आर द सिग्नेचर दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अबाउट फॉर टुडे सेशन, आई जस्ट स्टॉप हियर।
ओम शांति। सारे मनसा सेवा, इज इट एन इंटरनली ओरिएंटेड टास्क और एक्सटर्नली ओरिएंटेड टास्क? इट्स एन इंटरनली ओरिएंटेड टास्क। फिजिक यहां पर एक्सटर्नली ओरिएंटेड टास्क आई मीन डूइंग समथिंग फिजिकल। या वी आर असेसिंग थ्रू ईजी, fMRI, and then there are many other things also, transcranial magnetic stimulation, then behavioral data also. Sorry? Yeah. X-rays? No. So in this there is no X-rays, there is nothing called as radiation, all those hazards. So MRI is a safer thing. CT, all those are all based on X-rays. That has radiations. MRI is safer. Even people who are pregnant also go for MRI and all. It doesn't affect. Yeah. ठीक है, if there are no more questions, we'll stop here.
हम भाई जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें कैसे समझाया कि हमारी फिजिकल बॉडी और हमारा माइंड कैसे कनेक्टेड है, कैसे हमारा सिटिंग पोस्चर, हमारा ब्रीदिंग, आंखों का फोकस कैसे सब माइंड से कनेक्टेड है। मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा योग में। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी बाबा की याद में बैठेंगे और फिर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।